17 June 1978.
स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यो भूतं च भव्यं च, जो भगवान भूतकाल वर्तमान काल भविष्यकाल तीनों कालों में एक समान रहता है। सर्वं यश्च अधितिष्ठति, सारा ब्रह्मांड उस चेतन के आश्रय पर ही ठहरा हुआ है। स्वर्यस्य च केवलम, ऐसा जो भगवान है वो सुख स्वरूप है, उसमें दुख कलेश आदि कभी कुछ देखने में नहीं आता। तस्मै ज्येष्ठाय, वो सबसे महान और बड़ा है, उसके लिए नमस्कार है, प्रणाम है। सुख शांति और आनंद की प्राप्ति के चार साधन प्रधान रूप से संसार में देखने में आते हैं, धर्म, अर्थ, ज्ञान और मोक्ष। इन चारों के द्वारा ही संसार के मनुष्य सुखी रह सकते हैं। धर्म से तात्पर्य ये है, हमने योगियों ने तो धर्म के बहुत छोटे से अर्थ बना लिए हैं। वास्तविक में संसार के लोगों का और योगियों का तो धर्म, ये जो यम नियम है ना, इनसे बढ़कर के और कोई धर्म देखने में नहीं आता। जैसे यम नियमों में अहिंसा है, बड़ा भारी धर्म है। सब ऋषियों मुनियों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने इसको स्वीकार किया है। सत्य भाषण है, ये भी सब लोग मानते हैं, सबके लिए सुख शांति का हेतु बन सकता है। स्नेह है, चोरी का परित्याग है। अगर चोरी ना हो, चोर ना संसार में हो, तो ताले भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक बड़ा भारी धर्म है। अहिंसा, सत्य, स्थिर, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन भी एक बहुत ऊंचा धर्म है। सारे संसार के प्राणी इसके दास बने रहते हैं। और वास्तविक में ये गृहस्थाश्रम का संबंध जो है, ये तो संतानों की परंपरा चलाने के लिए है, और सारा जीवन ब्रह्मचर्य पालन में ही बीतना चाहिए। चाहे कोई गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, केवल संतानों उत्पत्ति के लिए गृहस्थ धर्म की आवश्यकता है। तो ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अपरिग्रह का अभिप्राय यह है कि जिन पर हमारा अधिकार नहीं, जिन पदार्थों पर, उनको यदि हम ग्रहण करते हैं, जो हमारी वस्तु नहीं है उनको ग्रहण करते हैं, या इंद्रिय जो विषयों में दौड़ती हैं, भागती हैं, उनको हम लगाम दे करके रखें, तो ये अपरिग्रह कहलाता है। तो इस प्रकार के ये जो पांच धर्म हैं, ये सारे मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हैं। कोई आस्तिक हो, कोई नास्तिक हो, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के मानने वाला हो, ये पांच धर्म जो हैं सबके लिए कल्याण के हेतु हैं। साथ में और धर्म हैं, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर निधान। शौच शरीर की शुद्धि, स्नान आदि से सब लोग करते हैं, पसंद करते हैं। मन की भी शुद्धि सब लोग पसंद करते हैं। तो शौच जो है, एक बाह्य होता है शरीर का, एक आभ्यंतरिक होता है। अगर ये दोनों प्रकार का शौच हमारे अंदर रहेगा, तो हमारा शरीर भी मन भी दोनों पवित्र रहेंगे। तो कितना ऊंचा धर्म है, सब संप्रदायों को ये स्वीकार करने योग्य है, करते ही है। संतोष, जो कुछ पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हो जाता है, परिश्रम के द्वारा, दिन भर कारोबार किया, व्यापार किया, नौकरी सर्विस करी, हमें प्राप्त हो गया, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसमें संतोष रहना चाहिए, क्योंकि संतोषात अनुत्तम सुख लाभा, संतोष से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। तब संसार के कर्म करते हुए जैसे आजकल आप लोग टेंटों में रह रहे हैं, ये भी एक तपस्या का जीवन है घरों की अपेक्षा। यहाँ साधन नहीं है सब सुखों के आराम के, फिर भी आप लोग रह रहे हैं तो किसी खास उपलब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए, या इस दुख कलेश को सहन कर करके कोई और अच्छी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये तप की भावना है। तो तप तपसा किल विषम हंति पापानी, तप जो है शरीर के अंतःकरण के पापों को दग्ध कर देता, नष्ट कर देता है। तो ये जो तपस्या का जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे हो, ये तुम्हारे ज्ञान जिस उपदेश से आए हो उस उपदेश की पूर्ति के लिए ये सफल होगा। संतोष तप स्वाध्याय, स्वाध्याय के दो अर्थ हो जाते हैं, भगवान के नाम का जाप और धर्म शास्त्रों का पढ़ना, ये स्वाध्याय कहलाता है। या जिन पुस्तकों में विज्ञान की बातें आती हैं, धर्म की बातें आती हैं, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना और परमात्मा के नाम का जाप करना, चिंतन करना, मनन करना, ईश्वर परिनिधान परमात्मा के प्रति जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रीति निष्ठा होनी चाहिए, तो उसकी भी सफलता होगी। तो ये पांच, ये धर्म हुए पांच पहले, इनसे बढ़ करके मैंने तो और भी बड़े ग्रंथ देखे सब कुछ, इतना ऊंचा धर्म मुझे तो कहीं और किसी ग्रंथ में मालूम नहीं होता जो ये योगियों का धर्म है। और ये सार्वभौम धर्म है, मनुष्य मात्र के लिए धर्म है, किसी संप्रदाय के विरोध में नहीं जाता, किसी मजहब के विरोध में नहीं जाता, किसी की बुराई नहीं करता, किसी का कुछ नहीं करता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन धर्मों को अपनाना चाहिए, ये जो दस प्रकार के धर्म हैं, तभी आपको परम सुख शांति और आनंद की और सर्व प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। योगज धर्म ने मेरे तो सब प्रकार के जातियों के, मनुष्यों के, वर्णों के सब भेदभाव खत्म कर दिए, मेरे लिए तो बहुत उपयोगी साबित हुआ है। किसी भी धर्म के साथ कोई विरोध नहीं रहा, किसी भी संप्रदाय के साथ कोई भेदभाव नहीं रहा, किसी भी मनुष्य मात्र के साथ में ऊंच में नीच में जाति के सात प्रकार के भेद मेरे तो इन धर्मों ने खत्म कर दिए। तो यदि आप भी इन धर्मों को अपनाएंगे तो आपके भी मनुष्य के भेद, जाति के भेद, वर्णों के भेद, नफरत के भेद, अनेक प्रकार के जो भेदभाव हैं सब खत्म हो जाएंगे और हमारा सबका अंतःकरण एक समान प्रीति वाला, स्नेह वाला, प्यार वाला हो जाएगा, हमारा संसार सुखद बनेगा भविष्य। दूसरे आचार्यों ने भी, मनु ने भी धर्म की बात कुछ कही है, उसने भी दस प्रकार के धर्म बताए, पर वो धर्म इन यम नियमों के अंतर्गत ही आ जाते हैं, कोई अलग नहीं जाते हैं। उसने भी दस प्रकार के धर्म मनु ने बतलाए हैं मनुष्य मात्र के लिए। धरती क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहा धीर विद्या सत्यम मै क्रोधो दशकम धर्मम लक्षण। धृति धैर्य रहना मनुष्य के अंदर, कोई आपत्ति मुसीबत आए घबराए ना। क्षमा यदि कोई अपराध कर देवे तो उसको माफ कर देना, कोई गलती कर देवे तो उसको क्षमा कर देना, किसी से कोई और कर्म बुरा हो जाए तो उसको ये समझ करके, या मेरा कोई नुकसान कर दे, अपराध कर दे, गाली दे, ऐसे व्यक्ति को भी क्षमा कर देना। द्वितीय क्षमा दमोस्तेयम, दम इंद्रियों का दमन, मन का दमन, इंद्रियों पर भी कंट्रोल रखना, जबरदस्ती बलात्कार से हमें ये इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त न करने पाए, इनको लगाम दे करके रखना। क्षमा धृति क्षमा दमो दम शौचम शारीरिक और मानसिक शुद्धि, सब प्रकार की वाणी की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि। इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में रखना, लगाम दे करके रहना। धीर विद्या पूरा धीर बनना, धैर्यमान होना, समझदार बुद्धिमान अकलमंद होना, धैर्य को धारण करके धीर विद्या तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना, इस लोक की विद्या भी पढ़ना और परलोक की विद्या भी पढ़ना। सत्यम हमेशा व्यवहार में, कर्म में, हर प्रकार से बर्ताव में सत्य का पालन करना, अक्रोध हो और क्रोध का परित्याग करना, ये 10 प्रकार के धर्म मनु ने बतलाए हैं। ये भी सार्वभौम धर्म है, पर ये धर्म यम नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं, कोई अलग जाने वाली बात नहीं है। अगर इन 10 प्रकार के धर्मों का पालन करोगे, संयम में नियम में रहोगे, तो सदा सुखी जीवन बना रहेगा, दुख की कोई बात पैदा ही नहीं होगी। दुख की भी कुछ आ जाया करती है, एक आदमी बड़ा धर्मात्मा है उस पर भी दुख कलेश आपत्तियां आ जाया करती है। कुछ तो आती हैं पूर्व जन्म के कारण, क्योंकि हम लोग तो पुनर्जन्म की श्रृंखला को मानते हैं। अगर माना जाए थोड़ी देर के लिए पुनर्जन्म नाम की भी कोई बात नहीं है, तो कुछ देवी आपत्तियां भी, जैसे मैं जा रहा हूं और एक दरख्त हवा से उड़ करके या पहाड़ से पत्थर आता है रुड़क के और मेरे सिर में लग जाता है और मुझे चोट लग जाती है, तो मैंने इस प्रकार का कोई कर्म तो किया नहीं था, ये सजा मुझे क्यों मिली। अगर आप पुनर्जन्म नाम की कोई बात नहीं मानते, तो इस देवता ने क्यों मुझे ये सजा दे दी, इस पहाड़ में, ये पत्थर में, ये सोचना पड़ता है। तो इसलिए पुनर्जन्म नाम की कोई बात माननी पड़ती है। इसको भी जाने दें, वर्षा हो रही है, विद्युत गरज रही है, एकदम विद्युत का झटका आया और मुझे उठा करके फेंक दिया, तेज अंधेरी चल रही है मुझे उठा करके फेंक दिया। तो ये जो इन भूतों से प्राप्त होने वाले, जैसे पृथ्वी है, भूकंप आ जाता है, दराड़ पड़ जाते, मैं भी उसमें मर जाता हूं, तो पृथ्वी से भी दुख प्राप्त होता है, जल से भी दुख प्राप्त होता है, फ्लड आ जाए, अति वर्षा हो जाए, और कोई कारण हो जाए, तो जल भी हमारे दुख, जहां पृथ्वी हमारे लिए सुख का हेतु है वहां दुख का हेतु भी है, जल हमारे लिए जहां सुख का हेतु है, जीवन का हेतु है, वहां दुख का हेतु भी है, अग्नि भी इसी प्रकार जहां हमारे लिए सुख का हेतु है वहां दुख का हेतु भी है। अगर देवयोग से बिजली के स्विच में कहीं गलती से हो जाए और उसका पकड़ ले रहे बिजली, तो वहां मरण जैसा ही हो जाता है, तो अग्नि के द्वारा भी दुख की प्राप्ति होती है, वायु के द्वारा बहुत अंधेरी आ जाए वो भी उठा के फेंक देती है और धक्का दे करके गिरा देती है, तोड़ फोड़ करती है, तो वायु के द्वारा भी जहां हमें सुख मिलता है वहां दुख भी मिलता है। तो इसी प्रकार ये जो भूत हैं, ये हमारे लिए सुख का हेतु भी है, दुख का हेतु भी है, परंतु जो अनायास ही हमको इनके कष्ट आ जाते हैं, ये क्यों आते हैं। अब पुनर्जन्म जो नहीं मानते वो तो कहते आ गया बस, क्या है, आ गया तो ठीक है, चलो आ गया, पर इनसे भी बचने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, अकल की, ज्ञान की आवश्यकता है। बिजली का स्विच है, जरा सोच समझ करके अकल से उसको पकड़ना है, अंधेरी आ गई है कहीं आड़ में ओढ़ में ठहर जाना है, उनसे भी बचने के उपाय बहुत है, फ्लैट आया है हाइट पर चढ़ जाए उससे भी बच, तो इनसे जहां हमें तो यहां बुद्धि की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता, समझ की आवश्यकता है। ये ज्ञान प्राप्त होता है समाज के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा और माता पिता के द्वारा। तो इसलिए संसार में जीवन को जो चलाना है वह ये सुख और दुख का हेतु बना रहता है। मन में थोड़ी देर के लिए अगर हम पुनर्जन्म को ना माने, पहला हमारा जन्म कोई हुआ ही नहीं था, वर्तमान का ही माने, तो वर्तमान के कर्मों का भी फल तो इसी जीवन में भोगना पड़ता है ना। पुनर्जन्म को न मानने वाले, जैसे देवी कोई आपत्ति आ गई, पहाड़ से मैं गिर गया, कोई और हो गया, तो मैंने वर्तमान में ऐसे कर्म किए हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाया है शारीरिक, अग्नि के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, धन के द्वारा, जल के द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचाया है। तो जैसे अगर मैं दूसरे का अपराध करता हूं तो न्यायाधीश मेरा फैसला करता है सजा का, यहां इन्होंने भी तो न्यायालय रखे हुए ना, कोई अपराध करता है तो अगर पुनर्जन्म नाम की कोई बात ना माने तो इस जन्म में भी बहुत से अपराध मनुष्य से होते हैं और उन अपराधों का फल इसी जन्म में, अगर हम चोरी से छिप करके अपराध करते हैं तो कुदरत उनका फल देती रहती है, ये भूत प्राणी जल अग्नि वायु आदि ये उनका फल देते रहते हैं हमारे, और हमारे पाप कर्म उस फल को आकर्षण कर लेते स्वयं। अगर हम न्यायाधीश के यहाँ फैसला भी ना करें तो हम जो पाप और पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म पुण्यों को आकर्षण कर लेते हैं और पाप कर्म पापों को आकर्षण कर लेते हैं। तो इसलिए पुनर्जन्म न मान करके भी वर्तमान के कर्मों से फैसला मानना पड़ेगा। तो इससे तो सिद्ध ये होता है कि जो मनुष्य कर्म करता है उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगो या अगले जन्म की बात करो। तो बिना भोगे न भुक्त्वा क्षीयते कर्म कोटि शतैरपि, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा कहीं भी, चाहे पुनर्जन्म मानो ना मानो, ये जन्म मानो इसमें भी छुटकारा नहीं होना, अगला जन्म मानोगे तो उसमें भी छुटकारा नहीं। बिना कर्म का फल भोगे तो छूटना ही नहीं है, चाहे जज उसका फैसला करके हमारे लिए दे दे दे, चाहे भगवान से फैसला करा लो। और मैं तो इस बात पर अब पहुंचा हूं कि कर्म का फल लेने के लिए पाप हो चाहे पुण्य हो किसी जज की भी जरूरत नहीं है और परमात्मा की भी जरूरत नहीं है, इन दोनों का वह कर्म फल का, जो कर्म किया जाता है कर्म का फल उसके साथ में निहित होता है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, देश काल निमित्त और सामग्री संग्रह करते हैं, ये पांचों चीज हमारे कर्म का फल अपने आप ही प्रदान कर देती हैं, न किसी जज की जरूरत है हमारे कर्म के फैसले के लिए, न भगवान की जरूरत है।